प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सभी श्रोता मित्रों का जो हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर अपने आशीषों के बारे हमें लिखकर बताते हैं और इतने ही नहीं अपनी प्रार्थना निवेदन हम तक पहुँचाते हैं। कृपया आप इसी प्रकार निरंतर संगति में बने रहें और अपने आशीषों को हम तक पहुँचाएं ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्य कहने पाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों यशाया की पुस्तक उसके 50 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं। इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के इस अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि प्रभु हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। हम जानते हैं कि हम मनुष्य दुर्बल और कमजोर हैं, हमारे जीवन के अंदर कुछ भी योग्यताएं नहीं है, इसके बाद भी आप हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि प्रत्येक श्रोता भाई बहन आज आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। हमारी प्रार्थना विशेष करके उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, तनाव और दबाव में हैं या किसी प्रकार के ऐसे उलझन में हैं। पिताजी, आप उनकी सुधि लें, उनकी सहायता करें, उन्हें शांति प्रदान करें, अपने वचन के द्वारा बोले और बातचीत करें। आज हम सब की आप सहायता करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि हम पिछले अध्ययन में देख रहे थे, पिता परमेश्वर इसराइल को उनके परित्याग का कारण बताता है और पुत्र परमेश्वर अपने अपमान की चर्चा करता है। तो आइए आप मेरे साथ यशाया 50 अध्याय उसके 5 पद को निकालें। यशाया 50 उसके 5 पद में लिखा है, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला और मैंने विरोध न किया न पीछे हटा। यह पद प्रभु यीशु के क्रूसीकरण पर उसकी सच्ची दीनता का प्रदर्शन करती है। निर्गमन की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 से 6 पद में हमें कहा गया है कि यदि कोई दास अपने स्वामी के साथ सदा रहना चाहे तो उसका स्वामी उसके कान में छेद करे। पद 6 में हम देखते हैं कि उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। मेरे प्रियो, उसके बाद वह कान में छल्ला पहन सकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि वह पहनता था। इसका अर्थ था कि अब वह आजीवन अपने स्वामी का दास बना रहेगा। उसके द्वारा आजीवन दासत्व स्वीकार करने के 2 कारण थे। पहला कारण था वह अपने स्वामी से बहुत प्रेम करता था। दूसरा कारण था उसने किसी दासी से विवाह किया और उसके बिना वह जाना नहीं चाहता है। क्या आप देख सकते हैं कि यह प्रभु यीशु के साथ कैसा प्रासंगिक था? भजनकार ने इस प्रथा पर लिखा है, तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। देखिए यही बात इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 5 पद में कैसे व्यक्त की गई है। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। भजन में लिखा है, तूने मेरे कान खोदकर खोले, और इब्रानियों में वह कहता है, मेरे लिए देह तैयार की। प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया था, तब उसके कान खोदकर नहीं खोले गए थे, उसे एक देह दी गई थी जिसे क्रूस पर ठोंका गया था। उसने एक महिमामय देह लेकर स्वर्ग में प्रवेश किया। उस देह पर कीलों के चिन्ह थे, उसके कान खुदवाने से अधिक किया गया। उसने अपने देह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए दे दिया, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता था और हमारे बिना स्वर्ग में नहीं जाना चाहता था। वह मुझसे और आपसे आज भी प्रेम करता है। यशाया के पुस्तक 50 अध्याय के 6 पद में लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए, अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। मेरे मित्रों, यीशु के बंदी बनाए जाने पर यह भविष्यवाणी पूरी हुई थी। मत्तीरची सुसमाचार, मरकुस और यूहन्ना तीनों इस तथ्य का लेखा रखते हैं कि उसके मुंह पर थूका गया, उसे कोड़े मारे गए, थप्पड़ मारे गए और उस पर प्रहार किया गया। हम इस तथ्य पर विचार करना नहीं चाहते हैं, हम इसे अनदेखा करते हैं, परंतु यह भविष्यवाणी वास्तव में पूरी हुई। अब हम आगे देखते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर का सुझाव, पुत्र में विश्वास। यशाया की पुस्तक 50 अध्याय के 10 पद में लिखा है, तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। यह पीछे पढ़ने वाली बात है। पवित्र आत्मा मीठी और याचना भरी बात करता है कि परमेश्वर के सेवक में विश्वास करे और उस पर आश्रित हो। अब वह चेतावनी देता है, यशाया की पुस्तक 50 अध्याय उसके 11 पद में, देखो तुम सब जो आग जलाते और अग्नि बाणों को कमर में बांधते हो, तुम सब अपनी जलाई हुई आग में और अपने जलाए हुए अग्नि बाणों के बीच आप ही चलो, तुम्हारी यह दशा मेरी ही ओर से होगी, तुम संताप में पड़े रहोगे। मेरे मित्रों, पहले तो वह याचना करके पीछे पड़ता है, फिर अपनी ही ज्योति लेकर चलने वालों को जो जगत की ज्योति का परित्याग करते हैं उन्हें चेतावनी देता है। एक बार किसी ने मुझसे कहा, मैंने रेडियो पर आपका प्रचार सुना और उद्धार के बारे में मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। वह अपनी ही आग जलाना चाहता था कि हम दोनों उसमें हाथ तापें। मैं जानता था कि वह झूठी आग है जिससे न तो गर्मी मिलेगी और न ही प्रकाश। अतः मैंने उससे स्पष्ट कहा, मैं सोचता हूं कि आपके विचार और मेरे विचार निरर्थक हैं। हमें परमेश्वर के विचारों पर ध्यान देना है और प्रभु यीशु के प्रकाश में चलना है। वह जगत की ज्योति है। यदि हम उसे जो जगत की ज्योति है स्वीकार ना करें तो हम अपने छोटे से दीपक की ज्योति में यहां चलेंगे। पवित्र आत्मा चेतावनी देता है, तुम अपनी उस छोटी सी ज्योति में दुखी होकर लेटोगे, अर्थात अनंत जीवन में भटकोगे। मेरे प्रियो, यहां पर अध्याय 50 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए देखेंगे अध्याय 51 से, जिसका विषय है अतीत के इतिहास से इसराइल की उत्पत्ति, भविष्य के प्रति इसराइल का दृष्टिकोण, इसराइल की वर्तमान दशा की रूपरेखा। इसराइल के प्रति परमेश्वर के भावी बोध के बिना इस अध्याय को पढ़ना असंभव है। जैसे उसके पास कलीसिया अर्थात आपके और मेरे भावी उद्देश्य हैं। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि अध्याय 50 का अंतिम पद एक चेतावनी के साथ पूरा हुआ था, जो आपको सहस्त्र वर्षीय राज्य की संकल्पना अस्वीकार करने के भ्रम में डाल सकता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमें यह भ्रम हो कि परमेश्वर ने इसराइल को त्याग दिया है, और जब वह इसराइल कहता है तो उसका अभिप्राय कलीसिया से है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है इसराइल तो उसका अर्थ इसराइल ही है। यदि वह कलीसिया को इसराइल कहता है तो कहीं न कहीं तो वह अवश्य कहता है मैं आशा करता हूं कि तुम समझोगे कि इसराइल से मेरा अभिप्राय कलीसिया है। जी नहीं, वह अति स्पष्ट करता है कि वह इसराइल ही कह रहा है। जिस प्रकार इसराइल का मूल बहुत छोटा था, उसी प्रकार वे आज भी छोटे एवं परित्यक्त हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। इसे समझाने के लिए मैं रेलगाड़ी का एक उदाहरण देता हूं। परमेश्वर इस संसार में दो योजनाएं पूरी कर रहा है। एक योजना भजन संहिता 2 उसके 6 पद में व्यक्त है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। यह रेलगाड़ी बाद में आएगी, अभी वह एक और खड़ी है। अभी मुख्य रेल पर इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय उसके 10 पद में हम देखेंगे, वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए। यह रेलगाड़ी खड़ी है, यह विश्वासियों कलीसिया के बारे में कहा गया है। जब यह रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर सही समय पर पहुंच जाएगी, तब परमेश्वर मुख्य रेल पर इसराइल और अन्य जातियों का कार्यक्रम लाएगा, क्योंकि वे तो उस समय पृथ्वी पर होंगे और वह उस रेलगाड़ी को भी उस समय पहुंचाएगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर की समय घड़ी इसराइल है। इस अध्याय में परमेश्वर अलार्म लगाता है कि नींद में पड़े लोग सचेत हो जाएं कि अनंत काल की सुबह आने वाली है। रोमियों की पत्री 13 अध्याय उसके 11 और 12 पद में हम पढ़ते हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ध्यान दीजिए कि बुराइयों को छोड़ करके सच्चाइयों को अपनाना है। अब हम आगे देखते हैं अतीत के इतिहास से इसराइल की उत्पत्ति। यशाया की पुस्तक 51 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। यहां पर शब्द है मेरी सुनो। क्या परमेश्वर अलार्म बजा रहा है? यह पुकार इसराइल के प्रत्येक निष्ठावान हृदय के लिए है जो धार्मिकता की खोज करता है और परमेश्वर को जानने की लालसा करता है। परमेश्वर कहता है जागो, सुनो, मेरे पास एक योजना है। तब हम देखते हैं यशाया की पुस्तक उसके 51 अध्याय के 2 पद में लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो, जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। परमेश्वर कहता है कि मैंने अब्राहम को बुलाया जब वह कस्तियों के देश में मूर्ति पूजा करता था, और देखो मैंने उसके द्वारा क्या किया है। अब मैं तुम्हारे मन में, तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूं। जी हाँ, वह कहता है कि अब वह मन में और जीवन में आना चाहता है। आगे हम देखते हैं भविष्य के प्रति इसराइल का दृष्टिकोण। यशाया की पुस्तक 51 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो, हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। वह कहता है हे मेरी प्रजा के लोगों, अर्थात इसराइल। यह उनकी महिमामय आशा के शब्द हैं। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 51 के 5 पद में, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है, मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा, द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। ध्यान दीजिए, मेरा छुटकारा निकट है। छुटकारा प्रभु यीशु है, वह हमारे लिए धार्मिकता ठहरा है। द्वीप अर्थात मनुष्यों द्वारा बसाए गए द्वीप। परमेश्वर कहता है कि मेरे पास उद्धार है जो मैं उन्हें दूंगा, मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। यशाया 53 अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर का भुजबल उसका उद्धार है। यशाया 53 उसके एक पद में वह पूछता है, यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? परमेश्वर चाहता है कि उसकी वह बलशाली भुजा अर्थात प्रभु यीशु भटके हुए संसार पर प्रकट हो। यही कारण है कि वह अपना संदेश भेज रहा है। यह भुजा भविष्य में इसराइल को मुक्ति दिलाएगी। यशाया की पुस्तक 51 अध्याय की 11 पद में लिखा है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। सियोन यरूशलेम में एक भौगोलिक स्थान है। हमें निश्चित कर लेना है कि परमेश्वर जो कहता है वह करता है। यशाया 51 अध्याय उसके 14 और 15 पद में हम पढ़ते हैं, बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वह मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार परमेश्वर उनके मूल पिता अब्राहम को पृथ्वी की छोर से लाया था, उसी प्रकार वह इसराइल को स्वदेश लौटा लाने की इच्छा रखता है। भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह भी यही कहता है, यिर्मयाह की पुस्तक 23 अध्याय उसके 8 पद में, यहोवा जो इसराइल के घराने को उत्तर देश से और उन सब देशों से भी जहां जहां उसने हमें जबरन निकाल दिया छुड़ा ले आया, उसके जीवन की सौगंध। ध्यान दे, एक दिन ऐसा आएगा जब इसराइल मिस्र से प्राप्त मुक्ति को स्मरण नहीं करेगा, क्योंकि उनकी भावी मुक्ति ऐसी महान होगी जो कभी उसने नहीं देखी। यह एक महान बात है, आप इसे अनदेखा करके भुला नहीं सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि जागो, देखो मैं यही करने जा रहा हूं। मेरे प्रियो, अब हम आगे देखते हैं इसराइल की वर्तमान स्थिति की रूपरेखा। इसराइल की वर्तमान स्थिति से हमें कुछ समझना है। परमेश्वर आज भी कहता है जागो। यशाया की पुस्तक 51 अध्याय के 17 पद में लिखा है, हे यरूशलेम जाग, जाग उठ, खड़ी हो जा, तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है, तूने कटोरे का लड़खड़ा देने वाला मद पूरा पूरा ही पी लिया है। आपको बस आज यरूशलेम देखना है, वह अराजकता का नगर है। आज मुझ में लेश मात्र भी इच्छा नहीं है कि वहां जाकर के बसूं, जबकि वह दाऊद का मनमोहक नगर था, वह परमेश्वर का भी मनपसंद स्थान है। परंतु परमेश्वर को उसका सौंदर्यकरण करना है, उसे वहां अभी अपने प्रजा को लाना है। परमेश्वर कहता है, हे यरूशलेम जाग, मैं तुझे एक महान नगरी बनाऊंगा। तब हम आगे पढ़ते हैं यशाया 51 उसके 22 पद में, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूं, तुझे उसमें से फिर कभी पीना ना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु का इनकार किया है, इसलिए परमेश्वर प्रकोप का प्याला उन्हें पिला रहा है। परंतु एक दिन उनसे वह कटोरा ले लेगा, उस दिन परमेश्वर उनका दंड उठा लेगा और उन्हें आशीष देगा। मेरे मित्रों, आप कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इसराइल को त्याग दिया है? काव्य न्याय भी कहता है कि वर्षों दंड देने के बाद परमेश्वर के लिए उन्हें आशीष देना आवश्यक है। परमेश्वर जयवंत होगा और यही वह यहाँ कहता है। आगे हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक 51 अध्याय उसके 23 पद में, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा लेट जा कि हम तुझ पर पांव रख कर आगे चलें, और तूने औंधे मुंह गिरकर अपनी पीठ को भूमि और आगे चलने वालों के लिए सड़क बना दिया। मेरे मित्रों, इसराइल के बैरी परमेश्वर के दंड से बचेंगे नहीं, क्योंकि यहूदी विरोध करने वाले प्रत्येक देश का पतन हुआ है। मिस्र, फारस, रोम, स्पेन, बेल्जियम और जर्मनी। इस अध्याय को पढ़कर विश्वासी सतर्क हो जाएं और जान ले कि परमेश्वर इसराइल ही को चुनेगा और मध्य पूर्व एशिया की घटनाएं तीव्रता से अंत समय की ओर बढ़ रही है। इस समय कोई विशेष भविष्यवाणी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन निश्चय ही सारी भविष्यवाणियां जिसे परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा दिया है पूर्ण होगी। मेरे प्रिय मित्रों, मैं नहीं जानता कि इस समय आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। सच तो यह है कि परमेश्वर ने जो भी भविष्यवाणियां की है वह आपके और मेरे जीवन में भी पूर्ण होंगे। उसने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को भेजा ताकि मुझे और आपको पाप के दंड से, उस भयानक मृत्यु से बचाए, और यही कारण है कि वह क्रूस पर बलिदान हुआ। उसने उस पवित्र और बहुमूल्य लहू को बहा दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। आज यदि आप उद्धार पाना चाहते हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ प्रभु यीशु पर विश्वास करें और इस बात को स्वीकार करें कि प्रभु यीशु ने आपके पापों की सजा अपने ऊपर ले ली है। चाहे आपके पाप कितने भी भयानक क्यों ना हो, वह आपको उससे छुटकारा दे सकता है, क्योंकि उसने आपके पापों की सजा उठाई है, उस मृत्यु को उसने सहा है और आज वह मृतकों में से जी उठा है। इसलिए जब हम अपने पापों को उसके सामने मान लेते हैं तो वह अवश्य ही मुझे और आपको क्षमा करता है। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, जिस प्रकार से उसने इसराइलियों को चेतावनी दी और उन्हें अवसर प्रदान किया, वह आज मेरे और आपके जीवन के लिए भी बार बार अवसर देता है ताकि हम उसकी ओर फिर जाएं। मैं नहीं जानता कि आपका जीवन क्या है, लेकिन इस बात को मैं जानता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह है और वह चाहता है कि आप उद्धार पाएं, शांति पाएं, आनंद पाएं, संसार की इन बुराइयों से आप छुटकारा पाएं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? यदि हां, तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए, जिसके द्वारा से आज आपने हमें इस बात का स्मरण दिलाया है कि आज भी आप हमारे जीवन से प्रेम करते हैं। और इतना ही नहीं, आप हमारे बदले में क्रूस पर मर गए ताकि हम जीवन पाएं। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय आपके वचन को सुन रहे हैं और अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन की उन बुराइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं। आप उनकी सहायता करें, उनके पापों को क्षमा करें ताकि वे इस बात को जान सकें कि आपने उनके पापों की सजा उठाई है। हाँ प्रभु, इसराइलियों को आपने बचाने के लिए अवसर दिया, हमें भी आपने दिया है। प्रत्येक के साथ होइए, सहायता कीजिए ताकि एक एक श्रोता भाई बहन का जीवन आप में सुरक्षित होने पाए। आज आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमारे श्रोता भाई बहनों के जीवन को आपने देखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप सहायता करेंगे इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। अगले अध्ययन में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप सब परमेश्वर की निकटता में बने रहें। प्रभु आप सब की सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत। वो ही हमारा खुदा है, वो ही है हमारा आमीन। यीशु ने हमको चुना है, गाएंगे हम उसके गीत।
यीशु ने हमको चुना।